महानगरीय संत्रास और भयावहता। राकेश के जीवन का काफी भाग शहरों में बीता था। दिल्ली और बंबई के विरूपताओं को उन्होंने बहुत निकट से देखा था, भोगा था। इन नगर में एक साधारण व्यक्ति के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना दुष्कर है, उसकी झांकी हमें राकेश की ठहरा हुआ चाकू, जख्म, पांचवें माले का फ्लैट जैसी कहानियों में मिलता है। ठहरा हुआ चाकू में दादा लोगों के आतंक का रोमांचकारी चित्रण है। एक बेरोजगार युवक अपनी प्रेयसी से मिलकर घर लौटते समय रास्ते में बर्फ खरीदने के लिए पृष्ठ 95 स्कूटर रोककर उतरता है तो एक नत्था सिंह नामक गुंडा उसमें बैठ जाता है। युवक के स्कूटर अभी खाली नहीं है कहने पर वह उससे लड़ने पर आमादा हो जाता है तथा उसे एक झापड़ मार देता है। युवक द्वारा विरोध किए जाने पर वह चाकू निकाल लेता है। खुले चाकू को देखकर युवक की जबान और छाती जकड़ गई और वह वहां से बदहवास सा भागता गया। वह अपने साथी महेंद्र को इस घटना की सूचना देता है और पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है तथा हर प्रकार से उस गुंडे के विरुद्ध कार्यवाही करने को तत्पर होता है। उसका एक रिपोर्टर मित्र भी उसके साथ होता है। घटनास्थल का कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी गुंडों से डरते हैं क्योंकि उनसे पुलिस, मंत्री, अधिकारी कोई उनकी रक्षा नहीं करते। जिस समय सरदार को शिनाख्त के लिए लाया जाता है उस समय युवक की मनस्थिति अच्छी नहीं रहती है, वह बुझा हुआ सा रहता है। मित्र के आश्वासन से भी उसमें किसी प्रकार के उत्साह का संचार नहीं होता है। उसकी मनस्थिति का एक चित्र देखिए। उसने पेंसिल से हाथ से पेंसिल रख दी और हथेली पर बने शब्द को अंगूठे से मल दिया। तब तक न जाने कितने शब्द और वहां लिख गए थे जो पढ़े भी नहीं जाते थे। सब मिलाकर आड़ी तिरछी लकीरों का एक गुंझल था जो मल दिए जाने पर भी पूरी तरह नहीं मिटा था। हथेली सामने किए वह कुछ देर तक उस अधबुझे गुंझल को देखता रहा। वह लकीर का नोक नुकता कहीं से बाकी था। उसने सोचा वहां एक वॉश बेसिन होता तो वह दोनों हाथों को अच्छी तरह मल मल कर धो देता। एक यह मनस्थिति युवक के अकेलेपन और महानगरीय जीवन में व्याप्त संतरास, भयावहता और असुरक्षा को भी स्पष्ट कर देती है। बड़े शहरों की जिंदगी जितनी तनाव भरी और दहशत भरी होती जा रही है, इसका जीवंत उदाहरण यह कहानी है। कहानी में आए संदर्भ और विवरण महानगरीय संतरास और भयावहता को प्रमाणित करते हैं। खुले चाकू की चमक से उसकी जबान और छाती सहसा जकड़ गई। उसके हाथों से पैसे वहीं गिर गए और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। दो, गुंडों के खिलाफ गवाही देने वाला इस महानगर में कोई नहीं होता है। सारा परिवेश और जीवन इनसे आतंकित रहता है। मेडिकल स्टोर के इंचार्ज का यह कथन महानगरी भयावहता और संतरास में जीवन को संकेतित करता है। नत्था सिंह को यहाँ कौन नहीं जानता। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके आदमियों ने पिछली गली में एक पान वाले का कत्ल किया है। खैरियत समझिए कि आपकी जान बच गई, वरना हमें तो इसकी भी उम्मीद नहीं रही थी। अब बेहतरी इसी में है कि आप चुपचाप मामले को पी जाएं। यहाँ आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो। तीन, नोट एक, पहचान ठहरा हुआ चाकू पृष्ठ 17, दो, पहचान ठहरा हुआ चाकू पृष्ठ 16, तीन, पहचान ठहरा हुआ चाकू पृष्ठ 20। पृष्ठ 96, युवक निरंतर एक भय और असुरक्षा का अनुभव करता है। लगता है कि उनसे रिपोर्ट लिखाकर अच्छा नहीं किया। गुंडे समय आने पर उससे अवश्य बदला लेंगे और यह भय उसे सोने भी नहीं देता। महेंद्र के सो जाने के बाद वह काफी देर तक साथ के कमरे से आती सांसों की आवाज सुनता रहा था। उस आवाज में उतनी सुरक्षा का एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। वह आवाज एक जीवित आवाज उसके बहुत पास थी और लगातार चल रही थी। जितनी जीवित वह आवाज थी उतना ही जीवित था उसे सुन सकना। चुपचाप लेटे हुए बिना किसी कोशिश के अपने कानों से सुन सकना। खिड़की से कभी कभी हवा का झोंका आता जिससे रोंगटे सिहर जाते, शायद रोंगटों में अपने अस्तित्व की अनुभूति। दो, स्पष्ट की ही इस कहानी में महानगरीय जीवन की भयावहता को तज्जनित संस्त्रास पूरी सफाई के साथ अभिव्यंजित हुआ है। गुंडों द्वारा आतंकित और संत्रस्त परिवेश का जीवंत चित्र यहाँ है। सुरक्षा और अस्तित्व का संकट आज के मानव की सबसे बड़ी समस्या है। राकेश ने इसे गहराई से संकेतित किया है। पांचवें माले का फ्लैट, यह बंबई महानगर के जीवन की गुत्थियों पर एक प्रकाश डालती है। वहां लोग एक दूसरे को पूरे नाम से भी नहीं जानते, यथा ए कपूर के ए को कोई गिनती में नहीं लाता। ए का मतलब अविनाश है या अशोक, यह भी जानने की जरूरत किसी को नहीं। कामकाजी जिंदगी के सब काम कपूर से चल जाते हैं। जो अधूरापन रहता है वह मिस्टर या साहब से पूरा हो जाता है। बंबई में दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं होता सिवाय अंधेरे और रोशनी के। जहां दिन में अंधेरा रहता है वहां रात में रोशनी, और जहां दिन में रोशनी रहती है वहां रात में अंधेरा हो जाता है। खाना इस मौसम में भी नहीं पचता और न उस मौसम में। तीन, नोट दो, पहचान, ठहरा हुआ चाकू, पृष्ठ 22। तीन, पहचान, पांचवें माले का फ्लैट, पृष्ठ 206। बंबई जैसे महानगर में लोग औपचारिकता में जीते हैं, मन में कुछ सोचते हैं और कहते कुछ और हैं। इस प्रकार के औपचारिक व्यवहार आदमी की जिंदगी का पृष्ठ 97 रस धीरे धीरे सोखते जाते हैं। अविनाश पांचवें माले के फ्लैट में रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वह कहीं मकान लेकर रह सके। एक बार जब वह सरला और प्रमिला दो बहनों को अपने घर ले जाता है तो वे बहुत नाक भौं सिकोड़ती हैं। उसके पांचवें माले पर पहुंचने के लिए अंधेरे जीने से आना पड़ता था। एक के बाद एक पांच माले, पहले माले पर सारे बिल्डिंग की सड़ांध, दूसरे पर खोपड़े की बास, तीसरे पर अनारदाने की बू, चौथे पर आयुर्वेदिक औषधियों की गंध। एक, प्रमिला सरला अविनाश के घर उसके पलंग उसके सामान का उपहास करती हैं। गुसलखाने से आई सरला का यह कथन, यह गुसलखाना तो अच्छा खासा अजायब घर है, मैं तो समझती हूँ कि अंदर जाने वाले को वालों से एक एक आना टिकट वसूल किया जा सकता है। यह उस घर में रहने वालों की आर्थिक स्थितियों एवं विवशताओं का मजाक ही तो है। महानगरों में कितने ही लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। राकेश का नगर बोध उनकी उन सभी कहानियों में मिलता है जहां एक टूटे हारे और बेरोजगार युवक का चित्रण है। उन कहानियों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, अतएव यहां उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। विभाजन और पारिवारिक विघटन की कहानियां। देश को एक साथ ही आजादी भी मिली और विभाजन का ताप और दाह भी। कितने ही लोग घर से बेघर हो गए और कितनों को अपने भरे पूरे परिवार में न केवल साजो सामान से हाथ धोना पड़ा वरन अपनी संतति को भी छोड़कर उस ओर आना जाना पड़ा। विभाजन तो देश का हुआ पर साथ ही घर भी विभाजित हो गए और मनों के बीच भी एक विभाजक रेखा खींच गई। यह बड़ी दारुण और त्रासद स्थिति थी जिसे भोगने के लिए हम विवश थे। हमने सब सहा और सहने से ज्यादा झेला। देश में एक नया परिवेश बना, एक नई लहर दौड़ी और इसे गहरे तक अनुभव किया कलाकारों ने, कथाकारों ने। परिणामतः तत्प्रभावी साहित्य की सर्जना हुई। राकेश इसके एक खास अंग बने और इस सच्चाई को अपने कथा साहित्य के माध्यम से चित्रित करने में भी अग्रणी रहे। इस विभाजन ने अपने प्रभाव तो अनेक रूपों में छोड़े, किंतु सशक्त प्रभाव दो रूपों में ही सामने आए। मानव संबंधों में परिवर्तन हुआ और व्यक्ति को अपेक्षित सहायता और सहयोग नहीं मिलने के कारण वे विकृत, विघटित व फ्रस्ट्रेटेड होकर रह गए। यह प्रभाव राकेश की कंबल, मलबे का मालिक और क्लेम जैसी कहानियों में देखा जा सकता है। नोट एक, पहचान, पांचवें माले का फ्लैट, पृष्ठ 215, पृष्ठ 98। क्लेम कहानी में शरणार्थियों को दी जाने वाली सरकारी सहायता के स्वरूप और प्रभाव का मनोभावाभिव्यंजक अंकन किया गया है। राकेश क्योंकि इस स्थिति को के भोक्ता और सूक्ष्म पर्यवेक्षक रहे हैं, अतः उनकी कहानियों में इसका चित्रण जिस रूप और शैली में किया गया है वह बड़ा प्रभावशाली बन पड़ा है। जिन्होंने अपनी वास्तविक जायदाद से अधिक क्लेम मांगे हैं उन्हें तो एक लंबी चौड़ी रकम मंजूर हो गई, और जिन्होंने सत्य का आश्रय लिया वे घाटे में रहे। एक स्त्री का 18,000 का क्लेम मंजूर होता है क्योंकि वह विधवा है। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं कि यदि वह अपनी जायदाद थोड़ी ज्यादा लिखवाती तो उससे अधिक रुपया मिल सकता था। एक और व्यक्ति है जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तथा जो जीता हुआ मुर्दे के समान शक्तिहीन है। वह केवल 1,000 रुपए चाहता है जिससे छोटी मोटी दुकान ही लगा सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एक अन्य व्यक्ति अपनी जायदाद का कई गुना क्लेम भरता है और उसे 8,000 रुपया मंजूर हो जाता है। इस पर उस स्त्री की जो प्रतिक्रिया हुई वह देखिए। मैं कहती रही कि जितना छोड़ आए हो उससे ज्यादा का क्लेम भरो, मगर ये ऐसे मूर्ख थे कि हठ पकड़े रहे कि जितना था उतने का ही भरेंगे। पहले ही इतने दुख उठाए हैं, अब और बेईमानी क्यों करें? आज ये मेरे सामने होते तो मैं पूछती कि बताओ बेईमानी करने वाले सुखी हैं या हम लोग सुखी हैं। लोगों ने जितना छोड़ा था उसका दिगना तुगना वसूल कर लिया और मैं बैठी हूँ 6,000 लेकर। लेकिन साधु सिंह जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, किंतु जो अपने परिवेश से उठकर बेगानी जिंदगी जी रहे हैं। परिवेश से उखड़ाव ही इस कथा की मूल संवेदना है। इसमें क्लेम को आधार बनाकर न केवल तत्कालीन स्थिति को उभारा गया है, बल्कि यह भी संकेतित है कि विभाजन के कारण व्यक्ति टूटा है, परिवार विघटित हुए हैं और जीवन विडंबना बनकर रह गया है। मानव मूल्यों में परिवर्तन हुआ है, परिणामतः मानव संबंध भी अप्रभावित नहीं रहे हैं। मलबे का मालिक, यह एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है जिसका घर परिवार हिंदू मुस्लिम दंगों की भेंट चढ़ चुके हैं। विभाजन के समय बहुत से लोग मजबूर होकर पाकिस्तान चले गए थे। विभाजन में 7.5 साल बाद मुसलमानों की एक टोली अमृतसर आती है और प्रत्येक स्थान का उत्सुकता से निरीक्षण करती है। बहुत से लोग उनसे बहुत से सवाल पूछ रहे थे। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता लाहौर एक शहर ही नहीं है, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए अभी अमृतसर के लोग उत्सुक हैं। नोट एक, क्वार्टर, क्लेम, पृष्ठ 176-177, पृष्ठ 99। आने वालों में एक बूढ़ा मुसलमान भी है जो पहले अमृतसर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था। उसका पुत्र और परिवार तो एक हिंदू पहलवान द्वारा पहले ही मारा जाता है। वह एक नज़र अपने मकान को देखना चाहता है तो पता चलता है कि वह मकान एक मलबे का ढेर बनकर रह गया है। रखा पहलवान ने इस मकान के लालच में ही उसके मकान के रहने वाले परिवार को मारा था, किंतु किसी ने उसे जलाकर खाक कर दिया। बूढ़ा यह सब नहीं जानता। वह मकान के अवशेष को देखकर बहुत दुखी होता है और दरवाजे की टूटी चौखट से लगकर विलाप करने लगता है। तब से रखा पहलवान उस मलबे को ही अपनी जायदाद समझता था। बूढ़ा गनी रखे पहलवान को बाहें फैलाकर आवाज देता है, अपराधी रखा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा रह जाता है। गनी उससे पूछता है, तू बता रखे यह सब किस तरह हुआ? तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर नहीं छिप सकता था, उसमें इतनी भी समझदारी नहीं थी। एक तो रखा केवल ऐसी ही कहकर रह जाता है। गनी की बातों से उसकी नसों में एक तनाव सा आ जाता है। कहानीकार ने उसकी नाजुक स्थिति का बहुत प्रभावशाली चित्रण किया है। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों को तोड़ के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। दो, कहने की आवश्यकता नहीं कि मलबे का मालिक विभाजन के परिणाम स्वरूप विघटित परिवारों की ही कहानी नहीं है। इसमें बदलते परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की टूटन भी व्यक्त हुई है। मूल्यों के ध्वंस और निर्माण के बीच यह कहानी संकेत देती है कि कुछ इमारतें तो नई बन गई हैं, किंतु पुराने मकानों के मलबे का ढेर अभी भी जहां तहां पड़ा दिखाई देता है। यह मलबा ही टूटते और टूटे हुए मूल्यों की सारी कहानी सुना देता है। रखे पहलवान की तरह हमारा एक वर्ग आज भी इन टूटे मूल्यों के मलबे पर उसे ही अपनी जागीर समझे हुए बैठा है, जबकि यह मलबा न तो उसका है न गनी का, वह तो इतिहास का हो चुका है। अब तो उसे हटना ही चाहिए, क्योंकि यही इतिहास और युग जीवन की प्रतिक्रिया है। नोट एक, पहचान मलबे का मालिक, पृष्ठ 155। दो, वही पृष्ठ 157। पृष्ठ 100। कुछ समीक्षकों को शिकायत रही है कि राकेश की कहानियों में न जीवन की पीड़ा तो है, दर्द का गहरा एहसास तो है, किंतु उपलब्धि और विद्रोह नहीं है। मेरी विनम्र सम्मति है कि उन्हें यह कहानी फिर से पढ़नी चाहिए, तभी वे अपना अप्रेक्षित आश्रय ग्रहण कर सकेंगे। कंबल, यह एक शरणार्थी कैंप में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। विभाजन ने पारिवारिक संबंधों को किस सीमा तक प्रभावित किया है, यह कहानी उसकी सही तस्वीर उपस्थित करती है। परिवार में पति पत्नी, लड़की तथा एक छोटा लड़का है। रात की ठंडक में कुछ लोग बनारसी पर कंबल डाल जाते हैं। नींद के अभिनय में उसने जांघ और छातियों पर कंबल डालने वालों के स्पर्श की भी उपेक्षा कर दी। उसने कल्पना की कि सर्दी में ठुठुरते कांपते खांसते उसके पिता पर भी किसी ने कंबल डाला होगा, लेकिन पिता के ऊपर कंबल न डाले जाने की स्थिति में भी वह अपना कंबल देने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने सत्य को आंखों से देखने की अपेक्षा अंधियारे ओट में छिपे रहना उचित समझा। माँ बच्चे को उड़ाने की बात करते हुए उससे कंबल छीनकर ओढ़ लेती है तथा स्वयं और पुत्र को ढक लेती है। माँ पुत्र को ढककर मातृत्व निभाती है, किंतु कहीं और से उसका मातृत्व छिल जाता है। वह पति की सर्दी की बात सोचती है, लेकिन उस पर कंबल डालने का त्याग नहीं कर पाती। पति रात में ठंड से सिकुड़कर मर जाता है और असहाय माँ बेटी से लिपटकर रोती रह जाती है। अभाव जीवन मूल्यों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यह तथ्य इस कहानी में बखूबी चित्रित है। कहानीकार की संवेदना यथार्थ से मिलकर यहाँ हृदय द्रावक हो उठी है। बाल मनोविज्ञान संबंधी कहानियाँ। यूं राकेश ने स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान का भी चित्रण किया है, पर उसका विश्लेषण हम बिखरा हुआ पुरुष एवं बिखरी हुई स्त्री संबंधों के अकेलेपन के अंतर्गत कर चुके हैं, अतएव यहाँ केवल बाल मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे। पहचान, यह एक सशक्त कहानी है जिसमें बताया गया है कि असफल दाम्पत्य संबंधों एवं माँ के पुनर्विवाह का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क को किस सीमा तक प्रभावित करता है। शिवजीत की माँ अपने पति सचदेव से तलाक लेकर अबरोल से विवाह कर लेती हैं। शिवजीत सचदेव का नाम अब शिवजीत अबरोल हो गया है। वह इस नई परिस्थिति, नए परिवेश में स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाता है। जब क्लास में उसकी हाजिरी शिवजीत अबरोल कहकर ली जाती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे भरी क्लास में उसे उसकी नेकर उतारकर नंगा खड़ा कर दिया गया हो। नोट एक, डॉक्टर धनंजय वर्मा, नई पीढ़ी की उपलब्धियां आलोचना, पृष्ठ 104। पृष्ठ 101। उसका अस्तित्व शिवजीत सचदेव से जाना जाता है। अबरोल उसे बेगाना लगता है। तलाक के समय पिता उसे साथ रखना चाहते हैं, पर मम्मी उसे अबरोल अंकल के घर ले आती हैं। उसे मम्मी का अबरोल अंकल के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। उनके बच्चों को के बीच वह बहुत बेगाना अनुभव करता है। पापा के साथ जाने की बात सुनने पर वह आंटी की बात सोचता है। क्लास में भी वह अत्यंत अस्त व्यस्त रहता है। अपने हार्निया की पेटी की बात वह सबसे छुपाना चाहता है। माता पिता के संबंधों के कारण बच्चों पर पड़े प्रभाव की यह बहुत प्रभावशाली कहानी है। इसी प्रकार माँ तथा पिता के व्यवसाय का बच्चे की मनस्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है, मरुस्थल उसे अभिव्यक्त करने वाली बेजोड़ कहानी है। 7 वर्षीय इंदु की माँ नसीमा, जो कभी वैश्या थी, बाद में अभिनेत्री बन जाती है। इंदु का पिता धनपत राय, जो कभी थिएटर के पर्दे खींचता था, बाद में फिल्म कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है। माँ और पिता दोनों ही पुत्र को व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इस छोटी उम्र में भी वह इतनी समझदार है कि देखने वाले की बुरी दृष्टि को पहचान लेती है। उसे गोपाल इसी कारण अच्छा नहीं लगता। जब वह गोपाल को माँ से यह कहते सुनती है, अच्छा तू इंदु को मेरे हवाले कर दे, उसका जो चाहे तू ले ले, एक तो वह कहती है, मैं तो ऐसी बात पर इसके थप्पड़ मारती, मगर अम्मी चुपचाप सुनकर हंसती रहीं। दो, अपने अल्पानुभव के आधार पर ही वह कहती है, अम्मी वैसे तो हमको पीटती हैं, पर उसके सामने ऐसे तारीफ करती हैं जैसे सचमुच हमको बेचना ही हो। तीन, उसे मम्मी का गोपाल के साथ भागने की योजना बनाना भी अच्छा नहीं लगता। वह बड़ी होकर डॉक्टरी पढ़ना चाहती है। उसकी माँ मुसलमान है और पिता हिंदू। उससे उसके मन में प्रश्न उठता है कि वह हिंदू है अथवा मुसलमान। धनपत राय कंपनी में पैसा लगाने वाले सेठों को इंदु की मार्केट वैल्यू समझाता है। वह उन्हें इंदु की कला दिखाना चाहता है। प्रदर्शन से पूर्व इंदु बहुत उदास हो जाती है। वह सबको छोड़कर अपनी सहेली के घर भाग जाना चाहती है, क्योंकि यह परिवेश उसे रास नहीं आता। जब उसे रंडी की औलाद कहा जाता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और हृदय भारी हो जाता है। ऐसी ही मनस्थिति में वह सेठों के सामने नाचते नाचते बेहोश हो जाती है। उसका बुखार उतरने में नहीं आता, किंतु उसके माता पिता अपने में ही व्यस्त हैं। नोट, एक क्वार्टर मरुस्थल 156, वही पृष्ठ 156। तीन, वही पृष्ठ 156। पृष्ठ 102। एक बालिका की यह दर्दीली तस्वीर पाठक के हृदय पटल पर बहुत गहराई से अंकित हो जाती है। छोटी सी चीज में नन्हे यशवीर की कथा है, जो पहली बार कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए गया है। वह वहाँ के तौर तरीकों से परिचित नहीं है, न ही उसे छुरी और कांटे से खाने का प्रयास है। प्रयत्न करके भी वह वहाँ के परिवेश में अपने को खपा नहीं पाता। उसका यह बेगानापन, यह विवशता अत्यंत स्वाभाविक है, तथा कहानीकार ने उसे किस शैली में उतारा है वह कहानी की मनोवैज्ञानिकता प्रदान करता है। राकेश की कहानियों में कुछ कहानी ऐसी है जो पारिवारिक संदर्भों में लिखी गई हैं। यद्यपि विभाजन ने परिवारों को आहत किया है और वे विघटित होते चले गए, इसी तरह विघटित का परिवारों की कथा में उसका विवेचन किया जा चुका है, किंतु कुछ कहानियां फिर भी ऐसी हैं जो शुद्ध पारिवारिक समस्याओं को लेकर लिखी गई हैं। ऐसी कहानियों में क्वार्टर पारिवारिक कहानियों में संयुक्त परिवार समस्या पर प्रकाश डालने वाली कहानियों को लिया जा सकता है। क्वार्टर एक ऐसी कहानी है। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां किस प्रकार एक व्यक्ति को अकेला और बेचारा बना देती है, यह कहानी का जीवंत प्रमाण है। शंकर को दिल्ली और जैसे शहर में 5 कमरे का क्वार्टर मिला हुआ है। उसके पिता उसके साथ ही रहते हैं और हर आने जाने वाले से बात करने को उत्सुक रहते हैं। उनके घर के सदस्यों के जीवन में दखल अंदाजी किसी को भी पसंद नहीं। उनकी दिन भर की बड़बड़ तथा आगंतुकों से बातचीत से शंकर को बहुत कोफ्त होती है। पिता के घर में रहने से उनके मेल जोल में फर्क पड़ता है, यह विवशता है कि जिसे चुपचाप सहने के सिवा और कोई चारा नहीं। उसके भतीजे गुन्नू पुन्नू भी नौकरी की खोज